कुछ बच्चों महाराज ने आज मन को प्रबुद्ध किया है। दो पृष्ठ पड़े गए हैं शेष बस अच्छी तरह से समझा रहे हैं स्वामी जी महाराज मन को, हम सबके मन को। अर्थ चर्चा साथ चलो, जो शेष ईर्ष्या की रहती है, विकारों की रहती है, आज उसे ही पूरा करते हैं। परसों मन पर चर्चा कर लेंगे। जिन समस्याओं के लिए हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी किसी फकीर के पास, कभी किसी दरगाह पर, कभी किसी संत के पास, कभी किसी संत के पास, कभी दिल्ली तो कभी वृंदावन, कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार, कभी बालाजी, जहां जहां भी व्यक्ति को पता लगता है किसी एक समस्या का समाधान हो सकता है, वही उस समस्या के समाधान के लिए वह भागता हुआ चला जाता है। परमेश्वर की कृपा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मत सोचिएगा जहां गए हैं आप वहां से आपको परमेश्वर की कृपा के बिना, परमेश्वर की इच्छा से बिना कुछ मिला हो, ऐसा नहीं है। कृपा हर जगह उसी की काम करती है। एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास से हो भी गया, अनेक समस्याएं साथ और उपज जाती हैं। आप किसी जगह पर गए, निसंतान थे, 10-11 वर्ष के बाद एक पुत्री पैदा हुई है आपके यहां, आपकी समस्या का समाधान हो गया। आप अब निसंतान नहीं हैं, अब आप संतानवान हो गए हैं। पुत्री के पैदा होते ही अनेक सारी समस्याएं और साथ ही साथ आ गई हैं। इसका अर्थ साधकजनों इतना ही समझने योग्य है, कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में दिखाई नहीं देता जो अंत समय तक अपनी समस्याओं का अंत कर सका हो। आपके भी अनुभव की चीज है, सबके अनुभव की चीज है, इसके बावजूद भी आदमी अपनी सारी की सारी जिंदगी, जितना भी जीवन है, वह इसी में झोंप देता है। जो चर्चा आपकी सेवा में की जा रही है देवी सज्जनों, ये समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिन समस्याओं की चर्चा आपकी सेवा में की जा रही है, वे समस्याएं खत्म होने योग्य हैं। वे समस्याएं खत्म होंगी तो ये समस्याएं तो अगले जन्म में भी चलती रहेंगी, उससे अगले जन्म में भी चलती रहेंगी। लेकिन यदि ये समस्याएं, जिन्हें विकार कहा जाता है, ईर्ष्या द्वेष अभिमान काम क्रोध इत्यादि कहा जाता है, यदि ये समस्याएं आप खत्म कर लेते हैं तो आप बाजी मार गए, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इन समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा। मेहरबानी करके, मेरा छोटा मुंह है, बड़ी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, इन समस्याओं के समाधान के लिए दत्चित होजिएगा, कमर कस लीजिएगा। इन समस्याओं से हमें रहित होना है और इसी जन्म में होना है। ये कर सकते हैं आप। उन समस्याओं का समाधान एक जन्म में संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का, ये जो महानतम समस्या है, इस समस्या का समाधान एक जन्म में हो सकता है यदि आप ठीक दिशा में चलते रहते हैं, गुरु के निर्देश के अनुसार, सत्संगति के लाभ से। कोई साधक चुनो, इन बातों के लिए तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। इन बातों की ऐसा लगता है कि ये किसी की समस्या है ही नहीं, या किसी को ये समस्या लगती ही नहीं है। आज तक किसी ने इस समस्या के बारे में पूछा हो, मैं उस व्यक्ति के चरण चूमूंगा। किसी ने कभी नहीं पूछा आज तक, इतने वर्ष हो गए हैं यहां पर, ये समस्या किसी की है ही नहीं। मानो हर कोई निर्भिमानी है, किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी के अंदर क्रोध की अग्नि नहीं है, सब शांत बैठे हुए हैं इन समस्याओं के होते हुए भी। परमात्मा तो जानता है, अतएव ये सब पुनर्जन्म की तैयारी है और कुछ नहीं। एक महिला, आज आयु तो देगी उसकी कुछ 30-31 वर्ष की ही होगी, लेकिन 50 वर्ष से भी ऊपर की लगती है, मानो वृद्ध लगती है, अनमैरिड है, ब्रह्मचारिणी है, अच्छी सेहत होनी चाहिए, स्वस्थ चेहरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत देर से, कई वर्षों से नींद नहीं आ रही, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया हुआ है, तनाव भरा चेहरा है, झुलसा हुआ चेहरा, पीला चेहरा है, धसी हुई आंखें हैं। क्योंकि नींद नहीं आती, इसलिए नर्वस वीकनेस की भी शिकार हो गई हुई है, नर्वस वीकनेस है उसे, स्नायु दौर्बल्य जिसे कहा जाता है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, इरेटिक हो गई हुई है, भूख लगी तो बहुत खा लिया, ना भूख लगी तो कई दिन नहीं खाया, स्वयं भी परेशान है, घर वाले भी बहुत परेशान है, डिप्रेशन हो गया हुआ है, डिप्रेशन में रहती है, हर वक्त उदास दिखाई देती है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, यदि करती है तो चिड़चिड़े स्वभाव से, क्रुद्ध स्वभाव से बोलती है, राम राम जपने वाली है लेकिन मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं टिकता, हर प्रकार के इलाज करवा लिए हैं, कोई एलोपैथ नहीं छोड़ा, कोई होम्योपैथ नहीं छोड़ा, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई पीर फकीर नहीं छोड़े, टोटे टूने टोटके जो करते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग हैं उनसे भी कंसल्ट किया गया है, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी ने एक दो बार आत्महत्या की भी कोशिश की है, मरी नहीं, मरी नहीं तो इस बात की भी निराशा है उसे, मानो कुछ मन में इस प्रकार का है, जो वह चाहती है होना चाहिए था वह हुआ नहीं है, इस बोझ को अपनी जिंदगी का बोझ बना के तो वह बैठी हुई है। आज साधकों, एक अंतिम प्रयास उस महिला ने किया है, आजकल पॉली क्लिनिक्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स, कई लोगों को उसके रोग का पता है, बेचारी जगह जगह भटक रही है लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। आज ऐसी क्लिनिक में गई है, डॉक्टरों का एक पैनल बैठा हुआ है, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, जनरल मेडिसिन वाले भी हैं, इत्यादि इत्यादि पूरा बेंच बैठा हुआ है और इस देवी को एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करने के बाद देवियों सज्जनों, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो उनकी डायग्नोसिस है वैदिक शिक्षा, डायग्नोसिस ये है कि ये बड़ी बहन है, अपनी छोटी बहन से घृणा करती है, अतएव उसके प्रति क्रुद्ध व्यवहार, उसके प्रति द्वेष की भावना, मानो अनेक सारी अग्नियां अंदर जल रही हैं। हुआ क्या, जिससे ये प्रेम करती थी और विवाह करना चाहती थी, उससे छोटी का विवाह हो गया। ये बात ये सहन नहीं कर पाई, ये बात ये स्वीकार नहीं कर पाई। बड़ी बहन है, इसलिए जब कभी मिलन होता है तो ऊपर ऊपर से तो प्यार जताती है, लेकिन अंदर से जैसे बम का गोला हो, कैसे ना किसी ढंग से मैं इसकी जान ले लूं, मार डालूं इसे। अंदर से अंदर घृणा की आग उसके अंदर, द्वेष की आग उसके अंदर भड़क रही है, ज्वाला भड़क रही है उसके अंदर। ये डायग्नोसिस इन्होंने डॉक्टरों ने दी थी। कहा, देवी इस रोग का इलाज हमारे पास नहीं है, मेहरबानी करके किसी संत महात्मा की चरण शरण में जाओ, वह तेरा इलाज करेगा। ऐसा ही हुआ। संबंध तो पहले भी था, लेकिन कभी संत के सामने, कभी वहां के जो आचार्य हैं उनके सामने अपना मुख नहीं खोला। आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन कभी दिल खोल के बात नहीं की। हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आत्महत्या के प्रयास भी कर चुकी हुई थी। जाप में मन नहीं लगा, सत्संगति से जो कुछ भी सुनती उसको फॉलो नहीं कर पाती, तो किस मुख से संत के सामने जाए। अतएव बिल्कुल कभी नहीं गई, आज हिम्मत की है। डॉक्टरों के कहने पर आज संत महात्मा के चरण शरण में गई है, जाके अपनी व्यथा सुनाई। थोड़ी सुनानी पड़ी, अधिक सुनाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी सी बात से उसके चेहरे से, उसका चेहरा, उसका व्यवहार, उसका सब कुछ, इट स्पीक्स। कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मानो बिना बोले ही सब कुछ समझा जा सकता था कि इस बेचारी को क्या रोग लगा हुआ है। खटखट करता है शरीर। 30 वर्ष की आयु की महिला, अनमैरिड हो तो अच्छी सेहत होनी चाहिए, अच्छे घराने की लड़की, खाने पीने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी वहां पर, लेकिन अपने दौर्बल्य के कारण, अपनी गलतियों के कारण अपनी ये दुर्दशा उसने कर ली हुई थी। अनेक वर्ष इस दुर्दशा में बीत गए हैं। आज संत ने इतना ही कहा, बेटा एक बात पूछो, क्या तुम्हें सत्संग में आते हुए ये बात अनेक बार दोहराई जा रही है, याद नहीं? संयोग वियोग, जन्म मरण, ये सब परमात्मा के अधीन है। क्या तुम्हें इस पर विश्वास है कि नहीं? हां, विश्वास है। फिर ईर्ष्या किस बात की? क्या अन्याय हुआ है तेरे साथ? यदि तेरे साथ इसका विवाह होना लिखा गया था, विधाता ने तेरे साथ लिखा हुआ होता तो तेरे साथ विवाह हो गया होता। यदि नहीं लिखा तो नहीं हुआ, तो फिर रुष्ट क्यों हो उससे जिससे हो गया है, जिसके साथ लिखा हुआ था? यदि तू सोचती है कि यह सब कुछ तेरे हाथ में था, तो फिर तूने विवाह क्यों नहीं कर लिया? स्पष्ट है, ये तेरे हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के ही हाथ में है। ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। यश अपयश देना, मान अपमान देना, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। संयोग वियोग सब अपने हाथ में, सफलता असफलता, किस कर्म का कितना फल देना है, कहां देना है, इत्यादि इत्यादि कैसा देना है, इस परमात्मा के सिवा और कोई नहीं जानने वाला। ये सब कुछ परमात्मा ने अपने हाथ रखा हुआ है, फिर दुखी क्यों है? यदि तू इन बातों को जानती है, यदि तुझे इन बातों पर विश्वास है, इतने वर्ष हो गए हैं तुम्हें सत्संगति में आते हुए, सत्संग में आते हुए, क्या ये सीखा नहीं तूने? फिर यदि सीखा है तो फिर ये क्रुद्ध चेहरा क्यों, ये ईर्ष्यालु व्यवहार क्यों, तेरा आचरण फिर इस प्रकार का क्यों, फिर कुड़कुड़ किस बात की कर रही हो, फिर ये रोग को क्यों अपने सिर पर रखे हुए हो, क्यों ये बोझ अपनी जिंदगी में उठाए हुए हो, खत्म करो इसे। आज जाके यहीं से शुरू करो, मेरे सामने परमात्मा के आगे मस्तक नवा के अपने सिर को परमात्मा के श्री चरणों पर रखकर परमात्मा से क्षमा मांगो। देवी मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यदि परमात्मा ने तुम्हें क्षमा, यदि तूने परमात्मा से क्षमा मांगी तो परमात्मा तुम्हें बल देगा अपनी बहन को क्षमा करने का। तू मेरे से वायदा कर, घर जाके अपनी बहन को क्षमा कर देगी। तू अपनी बहन को क्षमा कर देगी तो परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देगा। तूने बहुत अपराध किए हैं, दो बार तूने आत्महत्या के लिए प्रयास किए हैं, यह कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। तेरा जीवन कितना सुंदर होना चाहिए था, तूने उसे कितना बेढंगा बना लिया हुआ है, कितना बेसुरा उस जीवन को बना लिया हुआ है, कितना विकृत जीवन तूने बना लिया हुआ है अपना। तेरी अपनी गलतियों के कारण किसी का कोई दोष नहीं है, विधाता ने तेरी बहन का विवाह उसके साथ लिखा हुआ था सो हो गया, तो तुझे कुड़कुड़ चिड़चिड़ करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। साधक तो वही है साधक जनों जो परमात्मा की करनी को सहर्ष शिरोधार्य करना सीख जाता है। यदि ये साधक को अभी तक नहीं आया तो उसे समझना चाहिए उसी उसकी साधना की यात्रा अभी बहुत शेष है। परमात्मा की करनी में कोई दोष नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। उसकी हर करनी में हरेक का हित है, कभी अनुकूल उसमें भी हित और कभी प्रतिकूल तो उसमें भी हित। जो साधक इस बात को पहचान जाता है साधक जनों, वह परम शांति का भागी हो जाता है। आप कुछ भी कर लो, जैसा इस महिला ने करके देखा, तरह तरह के इलाज करवा लिए लेकिन रोग तो खत्म नहीं हुआ, रोग तो टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहा। क्यों क्यों बना रहा? इसलिए रोग का कारण तो मिटा ही नहीं। जब तक रोग का कारण नहीं मिटेगा तो रोग कैसे मिटेगा? रोग का कारण ढूंढो। मेरी माताओं सज्जनों, पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम किसी ना किसी प्रकार से हर एक कोई कोई रोग उठाए हुए हैं, घर जाके ढूंढो खोजो इस रोग का कारण क्या है। कोई ना कोई विकार मिलेगा। तनिक सोचो, सिर दर्द है किसी को, सिर दर्द रोग नहीं है, किसी एक चिन्ह है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेन के ऊपर झिल्लियां होती हैं उनकी सूजन भी हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है, पेट की खराबी भी हो सकती है, पेट में गैस बहुत है, सिर दर्द होती है, अनेक सारे कारण हैं सिर दर्द के। आप माइग्रेन कारण है सिर दर्द का, आप पेन किलर लेते हो आपकी सिर दर्द ठीक हो जाती है थोड़े समय के लिए, शाम को फिर लेनी पड़ती है या अगले दिन फिर लेनी पड़ती है या दो दिन के बाद फिर लेनी पड़ती है। क्यों? अभी तक कारण नहीं पता चला। आप खोपड़ी का एक्सरे करवाते हो, साइनस का एक्सरे करवाते हो, न जाने क्या क्या करवाते हो, MRI इत्यादि इत्यादि, इतना कुछ करवाने के बावजूद भी सब कुछ नॉर्मल निकलता है। दोष क्या है? आंखें ठीक नहीं, आंखों के मसल कमजोर हैं, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, आंखें पूरी तरह से कन्वर्ज नहीं कर पाती इसलिए हेडेक होती है। एक मिनट लगता है पता लगा, उसके बाद एक सप्ताह की एक्सरसाइज और सिर दर्द कभी होती नहीं है। क्यों? कारण पता लग गया। जब तक देवियों सज्जनों रोग का कारण नहीं पता लगेगा तब तक रोग बने रहेंगे। हमारे सबके रोग लगभग इसी प्रकार के हैं, हम ऊपर ऊपर से इलाज करवा रहे हैं लेकिन रोग टस से मस नहीं होते, रोग वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। क्यों? हमने कारण को नहीं निकाला। तो देवी सज्जनों, ईर्ष्या की चर्चा, द्वेष की चर्चा, अभिमान की चर्चा, विकारों की चर्चा यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।